राधे मेरी स्वामिनी, मेरा धे को जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवा। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
सभी लोग भाव से प्रेम से गाइए,
हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हाँ नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा हाँ श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा हाँ नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा भजुर मन गोविंदा हाँ नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं 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 तू ही बाल मुकुंदा भजुर मन गोविंदा हाँ नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, हाँ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, हाँ श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, हे कर सर पर धर अमर कर अनुसर कर परवर धर में करे, अरे हर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर भैर बने, अरे मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर नमे, घन रण पट फरड़ फरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदिर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदिर श्याम, हे तब दमक दमक दादुर जब डमकत, तब दमक दमक दादुर जब डमकत बहकत मोर मलाल गिरा, तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक पियु कोकिल कान्ह गिरा, तब गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ा कान घन रण ग्रीवर शिखर बजे, घन रण पट फरड़ फरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम, हे ब्रज की सब बाला रूप रसाला, ब्रज की सब बाला रूप रसाला करीबे हाला नंद लाला, लागी तन ज्वाला विपत्र साला इन दयाला नंद लाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी, नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी, गिरधारी रे जी गए विसारी, गिरधारी रे जी गए विसारी गिरधारी, हाँ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद,
ऐसे भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की पिता गौर प्रेमानंद, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 2 सबको बांटा है। गृहेष्वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन् गृहेष्वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवमाश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्ययेवश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौर वंशी विभूषित करां नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी यैमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमोश पूरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो रसषोडशात्मक सोलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति शुक्रवार इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर प्रति शुक्रवार को श्रीमद् भागवतम की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन के पांच पुरुषार्थ माने गए हैं। हमारे समस्त वेद और शास्त्रों में मनुष्य जीवन के पांच पुरुषार्थ का वर्णन है। सबसे पहले मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन अर्थात माता का धर्म, पिता का धर्म, मित्र का धर्म, पत्नी पुत्र इत्यादि का धर्म। तत्पश्चात उनके लिए अर्थ प्राप्ति करता है और अर्थ प्राप्ति करते करते उसे उस धन को भोगने के लिए काम उत्पन्न होता है। धर्म, अर्थ, काम। और धीरे धीरे व्यक्ति इस संसार में रहकर समझने लगता है कि वास्तव में इस संसार में जो काम है, इस संसार में जो सुख है, ये शाश्वत नहीं है। इस भौतिक जगत में बहुत कम समय के लिए सुख प्राप्त होता है, इसलिए वह ऐसा कर्म करने चलता है जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। और यह मोक्ष भी कई प्रकार के हैं। हमारे शास्त्र में पांच प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्य और साष्टी इत्यादि। इसमें व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो सकता है, परंतु इससे भी एक बड़ा पुरुषार्थ है जिसे अंतिम पुरुषार्थ कहा जाता है और जिसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है, वो है प्रेम। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेना, यह है सबसे बड़ा पुरुषार्थ और यह है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कार्य। यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कृष्ण में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन फेल है। यह मनुष्य जीवन भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करवाने के लिए मिला है। तो भगवान में प्रीति उत्पन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके हम भगवान में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं और भगवान में प्रेम उत्पन्न करके हम हमारा उद्धार कर सकते हैं। इस भौतिक जगत का जगत से उद्धार होकर हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कुछ लोग ये भागवत कथा सुनना चाहते हैं परंतु किसी के घर से उनके माता पिता नहीं आने देते हैं, कोई पति है तो उनकी पत्नी रोकती है भक्ति करने में, और कोई पति अगर पत्नी यदि भक्ति करती है तो उसका पति ससुर इत्यादि रोकते हैं। परंतु शास्त्र में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो वे अकेले अपना उद्धार नहीं करता है। ये कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र का नित्याम ये परिसेवितम, श्रीमद् भागवतम को यदि कोई नित्य श्रवण करता है तो पितु मातुश्च भार्या या कुलम पंक्ति सुतारिता, तो वे व्यक्ति अपना तो उद्धार कर ही देता है परंतु अपने उद्धार के साथ साथ पितु और मातु, पिता और माता का भी उद्धार करता है। यहां पर यदि आप भागवत की कथा श्रवण कर रहे हो तो आपके माता पिता भले कहीं भी बैठे हो उनका उद्धार वहां घर बैठे हो रहा है, और इतना ही नहीं भार्या या पत्नी का भी उद्धार हो जाता है। यदि पति श्रीमद् भागवत कथा सुनता है तो पत्नी का ऑटोमेटिक उद्धार हो जाता है, ये हम नहीं ये शास्त्र कह रहा है। और इतना ही नहीं भार्या या कुल पंक्ति, व्यक्ति भागवत कथा सुनकर अपनी माता का पिता का उद्धार कर लेता है, अपनी पत्नी का उद्धार कर लेता है, और भार्या या कुल अपनी पत्नी के भी कुल का, अर्थात अपने सास ससुर और जो भी साले इत्यादि जो भी है अपनी पत्नी के भी कुल का उद्धार कर लेता है श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर। तो इतना दिव्य श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है और श्रीमद् भागवतम की कथा है। तो उसी श्रीमद् भागवतम की कथा हमें यहां पर प्रति शुक्रवार को सुनने का लाभ मिल रहा है। इसके पीछे एकमात्र हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, उनकी कृपा अनुकंपा के कारण आज देश देश में, देश विदेश में सभी जगह पर यह श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही है। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं और हम जो यहां पर श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद की कथा, श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय की कथा है। बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म कल आप पर शुक्रवार को आपने सुना, राजसूय सभा संपन्न हुई और राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को प्रश्न पूछा है। नारद मुनि वक्ता है और युधिष्ठिर महाराज इत्यादि जितने भी ऋषि मुनि इत्यादि बैठे हैं ये सब श्रोता है, और महाराज युधिष्ठिर बहुत ही सुंदर प्रश्न नारद मुनि को पूछते हैं कि हे नारद जी, आप परम कृपालु हैं, भगवान के प्रचार करने वाले में शिरमोर हैं, आप अपने हाथ में वीणा लेकर निरंतर राधा कृष्ण का गुण गाते रहते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, राधिका रमण नाम से आप निरंतर वीणा बजाते हुए रहते हैं, अब कृपया करके आप मुझे यह बताइए कि सनातन धर्म क्या होता है। तो युधिष्ठिर महाराज का उत्तर देते हुए नारद मुनि ने सनातन धर्म का वर्णन करते हुए कहा कि जीव भगवान का सनातन अंश है और भगवान का सनातन अंश होने के नाते उनका सनातन धर्म है कि वे भगवान के प्रति प्रेम करें, परमात्मा के प्रति प्रेम करें, और परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश, चार प्रकार के वर्ण और चार प्रकार का आश्रम निर्माण किया गया है ताकि यह वर्ण और आश्रम की पद्धति मनुष्य अपने जीवन में धारण करके भगवान के प्रति प्रेम करना सीख ले। तो नारद मुनि ने आगे के अध्यायों में चार वर्ण की कथा सुनाई और तीन आश्रम की कथा सुनाई, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम किस प्रकार से लिया जाता है, और किस प्रकार से यदि व्यक्ति सन्यास धर्म का पालन करता है और भगवान को प्राप्त होता है। यह कथा नारद मुनि ने सुनाई। जब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से यह कथा सुने तो बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि सन्यासी धर्म पालन करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, परंतु मैं तो गृहस्थ हूं। और युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कहते हैं कि प्रभु, आपने सन्यासी धर्म का वर्णन किया परंतु गृहस्थ धर्म का वर्णन नहीं किया। कृपया करके आप गृहस्थों के बारे में बताइए, क्योंकि मैं एक गृहस्थ हूं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, गृहस्थ एताम पदवीम विदिना येन चांजसा याति याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मुढ़धि। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे नारद जी, मैं एक गृहस्थ में गृह में आसक्त रहने वाला व्यक्ति हूं, और दिन रात किस प्रकार से घर चलाना चाहिए, किस प्रकार से बच्चे को एडमिशन, किस प्रकार से उनका स्वास्थ्य, किस प्रकार से पत्नी का भरण पोषण, यदि पत्नी रूठ गई है तो मनाना, उसके लिए कुछ लेकर आना, ऑफिस में जाना, वहां पर नाना प्रकार के कार्य, यह सब कार्यों में उलझा हुआ हूं, लगा हुआ हूं, और मेरा जीवन बिल्कुल जा रहा है। अब मुझे यह बताइए कि मेरे जैसे गृह मुड्ढ दी, मेरे जैसे गृह में आसक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज वास्तव में ये हम सब के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज इस देश के चक्रवर्ती सम्राट थे। यद्यपि उन्हें इस उपदेश की आवश्यकता नहीं थी, परंतु हम जैसे लोगों के ऊपर कृपा करके युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं कि मेरे जैसा गृह मुड्ढ दी, गृह में आसक्त रहने वाला किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में जो व्यक्ति गृहस्थ में पड़ा हुआ है, गृहस्थ जीवन में पढ़कर निश्चित रूप से व्यक्ति आसक्त हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहना एक तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है। चारों ओर से, संसार के सभी ओर से माया और आसक्ति का प्रभाव है। उस प्रभाव के बीच में रहकर भी जैसे पद्म पत्र इवाम बसा, जैसे कमल कीचड़ में रहता है परंतु उस कीचड़ से थोड़ा भी प्रभावित नहीं होता है और बहुत ही सुंदर रूप और सुगंध फेंकता रहता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में माया और भोगों के बीच में रहकर शुद्ध भक्ति करना बहुत मुश्किल। प्राय जो गृहस्थ है ये भजन नहीं कर सकते। और महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जीवन बीत गया, भजन नहीं कर पा रहा हूं और मेरा जीवन जा रहा है। तो इसी भाव में भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही सुंदर कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कहते हैं, यौवने यखन धन उपार्जने हैनु विपुल कामी। हे महाराज युधिष्ठिर, यौवन यखने धन उपार्जने, मुझे बहुत ही सुंदर युवानी मिली थी, जवानी मिली थी, यह जवानी भक्ति करने के लिए भगवान देते हैं, परंतु उस जवानी में मैंने केवल धन कमाने के लिए लगा दी। जवानी कम धन कमाने में बिता दी और धन कमाते कमाते मैं बहुत कामी बन गया। धर्म समारिया गृहिणी रकर धरिनु तखन आमी। जब मैं इस प्रकार से यौवन अवस्था में आया, धन कमाने लगा, तो धन कमाते कमाते मुझे विचार हुआ कि अब विवाह कर लेना चाहिए और अच्छी स्त्री को ढूंढकर उनके साथ विवाह किया। संसार पाताये ताहार सहित कालाक्षय केनुकत। विवाह करके मैंने ज्यादा से ज्यादा समय पत्नी के साथ बिताया। वास्तव में पत्नी के साथ रहकर गृहस्थ जीवन का धर्म है भगवान का भजन करना। भगवान की भक्ति में कुछ बाधा आती है, वह बाधा न आए इसलिए विवाह करना चाहिए, परंतु विवाह करके तो मैं पत्नी में ही फंस गया और पत्नी की डिमांड पूरी करने में ही मेरी जवानी चली गई। ज्यादा से ज्यादा समय पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी यही कहती है कि तुम मुझे बहुत कम समय देते हो। मैं सच कह रहा हूं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा समय मैंने मेरी पत्नी के साथ बिताया, लेकिन आज पत्नी यह कह रही है कि तुम घर पर रहते ही नहीं हो। बहुसूत सूता जन्म लभिल मर में हई लगती। और पत्नी आने के बाद बच्चे तो होने ही है, फिर कई बच्चे उत्पन्न किए और उस बच्चे को जब छोटा था तब उसको पालने में पोसने में, बड़ा हुआ तो एडमिशन में, उसकी फीस भरने में, कपड़े खाने पीने या करते 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 जवानी चली गई और बहुत लंबी उम्र बीत गई और मैं फंस गया। अकेला था, स्वतंत्र था, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, राजा की तरह घूमता था, परंतु धन जेब में आया तो विवाह करने का मन हुआ और विवाह करके स्त्री के पीछे ही पड़ा रहा और बाद में पुत्र हुए तो उस स्त्री और पुत्र में बिल्कुल फंस गया। और यही होता है, प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि कथम हे मेरे प्रिय मित्रों, यदि बचपन से ही भजन भक्ति नहीं करोगे तो विवाह होने के बाद भजन भक्ति नहीं होगी। कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान। अभी बहुत ही सुंदर 5 साल की उम्र है, बहुत ही सुंदर अवसर है भक्ति करने का, परंतु जब विवाह होगा और बहुत सुंदर पत्नी को लेकर जब घर पर आओगे और बेडरूम में बैठकर केवल दो पति और पत्नी बैठोगे और पत्नी मीठी मीठी वाणी से जब तुम्हारे साथ बात करेगी तब कथम कहां से भगवान याद आएंगे? नहीं आएंगे। और पत्नी आएगी कुछ साल के बाद, बच्चे होंगे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान। सुहेसु तत्स्नेह सीत शिशुनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। बच्चे होंगे, बच्चों को बड़े करने में, उनका विवाह करने में, उनका विवाह अच्छी जगह हुआ है या नहीं, यह सब झमेले में व्यक्ति फंस जाता है और फंस कर जीवन बीत जाता है, भजन नहीं हो पाता है। और कहता है कि मैं इतना फंसा हुआ हूं कि भजन नहीं कर सकता हूं। तो क्या यह आपको फंसाने के लिए भगवान कृष्ण या ब्रह्मा जी आए थे? हमारी बुद्धि से हम निर्णय करते हैं कि हम विवाह करेंगे और विवाह करने के बाद फंस जाते हैं और दोष दूसरों को देते हैं। वास्तव में ये हमारा ही बंधन है। इसलिए कहते हैं त्यजेत कोशस्तु दिवेह मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम। जैसे रेशम का कीड़ा अपनी मुख से लार निकाल कर अपना घर बनाता है और घर बनाते 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 एक दिन ऐसा घर बन जाता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और अपने ही बनाए हुए घर में तड़प करके वो मर जाता है, वैसे ही अपने ही बनाए हुए पत्नी पुत्र के झमेले में फंस कर व्यक्ति मर जाता है, भजन नहीं कर पाता है। और बीत गयो दिन भजन बिना, फिर नरक में जाकर यही अफसोस करता है कि बीत गयो दिन, चले गए वे दिन भजन करने के, अब कुछ नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज के भाव में ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं बहुत पुत्र उत्पन्न किए और झमेले में फंसा और बहुत बहुत जब पुत्र उत्पन्न किए तो आगे क्या होता है, कहते हैं संसारे भार बाड़े दीने दीने अचल हई लगती। ये संसार का भार ढो ढोकर दिन भर दिन, मैं सोचता हूं कि यह भार कम होगा परंतु दिन भर दिन ये संसार का भार बढ़ते ही जा रहा है और अचल हैल गति, अब तो मुझसे कुछ काम भी नहीं हो रहा है। वार्धक्य आसिया घेरील अमारे अस्थिर हैल गति। अब बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे में कुछ काम नहीं हो रहा है, गति अस्थिर हो गई। आप समझो कि भक्ति विनोद ठाकुर बूढ़े हो गए हैं इसलिए यह कविता बूढ़ों के लिए है, ऐसा नहीं है। वास्तव में इस संसार में कौन बूढ़ा नहीं है, सब लोग बूढ़े हैं। क्योंकि बुढ़ापा का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु बहुत करीब आ गई हो उसे बुढ़ापा कहते हैं, उसे बूढ़ा कहा जाता है। इस संसार में किसी का कोई भरोसा है मृत्यु कब हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सब लोग बूढ़े हैं, यह सबके लिए है। आगे कहते हैं, पीड़ाय अस्थिर चिंताय जरित अभावे ज्वलित चीत। अब तो मैंने जितना जितना धन अर्जन किया, जितने बच्चे पैदा किए, पत्नी, ये सब के से सब लोगों की अब मुझे चिंता हो रही है कि ये लोगों का क्या होगा। जब धन नहीं था तो कोई चिंता नहीं थी, परंतु धन और पुत्र जब आए तो चिंता और बढ़ने लगी। उपाय न देखी अंधकारमय एकने हये ची भीत। अब मुझे किसी भी प्रकार का उपाय नहीं दिख रहा है कि क्या किया जाए, केवल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। अब मैं क्या करूं, ये प्रश्न हो रहा है। संसार तटीनी स्तोत्र न है शेष मरण निकटे घोर। इस संसार सागर में डूबते डूबते मृत्यु करीब आ गई है और मृत्यु करीब आ रही है, इसलिए बहुत ही दुख और भय प्रकट हो रहा है। सब समापिया भाजीव तो माय ए आशा विफल मोर। मृत्यु का समय करीब आ गया, अब मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर आपका भजन करूं प्रभु, पर प्रभु ये मैं सोच रहा हूं परंतु ये भी नहीं हो सकता है, ये मेरी आशा भी विफल है, क्योंकि इस उम्र में मैं आपका क्या भजन करूंगा। जिस उम्र में भजन किया जाता है उस उम्र में भजन नहीं किया, बूढ़ा होकर आपका क्या भजन करूंगा। संसार में लोग कहते हैं, आप ये जो भजन भक्ति भगवान का नाम ले रहे हैं ये सब बूढ़ा होकर लेना चाहिए, अभी तो कमाने की उम्र है। वास्तव में बूढ़ा होकर व्यक्ति ठीक से लेटरिन भी नहीं जा सकता है, वे क्या भजन करेगा। भजन करने का सही काल यही है। अंत में कहते हैं, अबेशुन प्रभु आमी गति ही न भक्ति विनोद कोय तव कृपा बिना सकली निराशा देहे मोरे पदाश्रय। अब तो तब ही मेरा काम हो सकता है जब भगवान स्वयं मुझे अपने चरणों का आश्रय दे। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कह रहे हैं कि मैं फंसा हुआ व्यक्ति हूं, ये गृहस्थी में फंसा हुआ हूं, अब आप कृपया करके मुझे गृहस्थी में रहकर गृहस्थ जीवन में रहते हुए क्या करना चाहिए इसका उपदेश कीजिए। जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा हुई तब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को अब गृहस्थ जीवन में रहकर क्या करना चाहिए यह उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। गृहस्थ धर्म का उपदेश नारद मुनि प्रारंभ करते हैं। श्री नारद उवाच, श्री नारद उवाच का अर्थ होता है, श्री का अर्थ होता है ज्ञान, ऐश्वर्य, सौभाग्य, सुंदरता इत्यादि। तो नारद मुनि को संबोधन देते हुए आगे श्री इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नारद मुनि संपूर्ण ज्ञानी थे, पूर्ण भगवान के भक्त थे। और युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न पूछने पर नारद मुनि उत्तर देते हैं कि गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन यथोचिता वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। हे राजन, सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज को संबोधन दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछे हैं तो संबोधन देने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप में से कोई मुझे प्रश्न पूछता है तो मुझे केवल उसका उत्तर देना होता है, आपका नाम लेकर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कन्वर्सेशन केवल दो ही लोगों के बीच में हो रहा है। परंतु फिर भी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को राजन करके संबोधन दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि हे महाराज युधिष्ठिर, अब मैं गृहस्थ धर्म का वर्णन करने जा रहा हूं। जिस गृहस्थी में आप फंसे हो, उस गृहस्थी में फंसे हुए व्यक्ति कैसे बाहर निकल सकते हैं, उस धर्म का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। श्रोताओं का अट्रैक्शन खींचने के लिए उसे वक्ता के वक्तव्य में ध्यान दिलाने के लिए कभी कभी शुरू कथा में संबोधन दिया जाता है। तो हे राजन, गृहेषु अवस्थितो, हे राजन, गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थी को क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यह समझ लो कि गृहस्थी, आप गृहस्थ जीवन स्वीकार किए हो तो गृहस्थ जीवन में ही रहना चाहिए। कुछ लोग गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं परंतु भक्ति में आ जाते हैं तो वैराग्य ले लेते हैं, पत्नी की ओर ध्यान नहीं देते हैं, पुत्र की ओर ध्यान नहीं देते हैं, धन कमाने में ध्यान नहीं देते हैं। परंतु ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले नारद मुनि का उपदेश है गृहस्थ अवस्थितो राजन। हे राजन, मैं तुम्हें उपदेश देने जा रहा हूं और यह उपदेश अपने जीवन में पालन करना है, और इसको पालन करते हुए गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है। इस संसार में भक्ति में व्यक्ति जब शुरू शुरू में आता है, सभी ओर से व्यक्ति दुखी होता है, और जब उसे भगवान की भक्ति मिलती है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। तब वह सोचता है कि यह सब कुछ छोड़ दूंगा और मंदिर में बैठ जाऊंगा या किसी जंगल में वृंदावन चला जाऊंगा, बाबा जी बन जाऊंगा। परंतु छोड़ना नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन स्वीकार किए हैं तो गृहस्थ जीवन के जो कर्तव्य हैं उसे पालन करना ही होगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं गृहस्थ अवस्थितो राजन। हे राजन, गृहस्थ में ही रहना चाहिए, बाहर भागिए मत। गृहस्थ में रहते हुए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। तो गृहस्थ अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन यथोचिता, यथोचिता क्रिया कुर्वन। गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थ व्यक्ति के कुछ धर्म होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी को ठीक से भोजन या धन इत्यादि देना, अपनी पत्नी का संरक्षण करना, अपने पुत्रों को पढ़ाना लिखाना, ये गृहस्थी का धर्म है। कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूं और भक्त बन गया हूं इसलिए पत्नी को नहीं खिलाऊंगा, पुत्र को नहीं खिलाऊंगा, मैं केवल भजन करूंगा, ये ठीक नहीं है। नारद मुनि कहते हैं कि यथोचित क्रिया कुर्वन। गृहस्थ जीवन में यथा उचित जो क्रिया होती है, यथा उचित जो कर्तव्य होते हैं, वो निश्चित रूप से सबको करने ही चाहिए। और जो इस प्रकार गृहस्थी के कर्तव्यों को छोड़कर भाग रहा है और भटक रहा है, ये कोई बड़ा भक्त नहीं है। गृहस्थी में रहकर ही भजन जो करता है, वास्तव में ये बड़ा भक्त है। आगे कहते हैं ठीक है, गृहस्थी में ही रहूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने मान लीजिए कहा कि ठीक है, गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, अब तो गृहस्थी में ही रहूंगा और गृहस्थ जीवन के जो कर्तव्य है यह है वो भी मैं पालन करूंगा, लेकिन फिर क्या करना है। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, वासुदेव अर्पणम साक्षात। गृहस्थी में रहकर तुम जो कर्म करते हो, उस कर्म को वासुदेव अर्पणम, वसुदेव नंदन भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। गृहस्थी को कर्म करना चाहिए, कर्म त्यागना नहीं है, परंतु कर्म करके कर्म के फल को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत आश्चर्यमय बात है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि वासुदेव को अपने कर्म अर्पण करने चाहिए और वासुदेव कृष्ण वहीं पर बैठे हैं और वे भी इस उपदेश को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि वे तो सबसे बड़े गृहस्थ हैं, 16108 के पति हैं, और वे भी युधिष्ठिर महाराज की तरह हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मैं तो बहुत फंसा हुआ हूं, प्रभु मेरा भी कुछ कीजिए। ये युधिष्ठिर महाराज की ये सब की तो एक एक पत्नी है, मैं तो 16108 का भार लेकर चल रहा हूं, मेरा भी कुछ कीजिए। वे भी वही भाव में थे, परंतु वे तो साक्षात परब्रह्म भगवान है। वे तो एक 16000 क्या 16 लाख भी अगर पत्नी रखे, फिर भी जो पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, भगवान का एक नाम है विश्वम्भर, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं उसे विश्वम्भर कहा जाता है। पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला 16108 का करते कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान वासुदेव को कृष्ण को हमारे जीवन के जो कर्म है गृहस्थ को वे अर्पण करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस उपदेश को बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं। सबसे पहले क्रम से भगवान उपदेश देते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मई एव मन आदस्व मई बुद्धि निवेशय निवसी निवस ऐश्यसी मई एव अत ऊर्ध्वम न संचय। हे अर्जुन, तुम्हारा पूरा पूरा मन मुझ में लगाओ, पूरी बुद्धि मुझ में लगाओ, और पूरा मन और बुद्धि मुझ में लगानी चाहिए। परंतु अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये मन और बुद्धि को आप में लगाना ये कोई मेरे बस की बात नहीं है। संसार में हम देखते हैं ये मन भगवान में लगना ये बहुत मुश्किल है, और बुद्धि को भगवान में लगाना बहुत मुश्किल। अर्जुन ने तो यहां तक कह दिया, कृष्ण यदि आप कहो तो मैं वायु को वश में कर सकता हूं, तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायु एव सुदुष्करम, परंतु मन को वश में करना ये मेरे बस की बात नहीं। अर्जुन कह रहा है मन को बस में करना मेरे बस की बात नहीं है, तो हम तो अर्जुन से कोई बड़े धनुर्धर तो नहीं है। तो भगवान ने कह दिया मन और बुद्धि को मुझ में लगाना चाहिए, यदि कोई यह कर सकता है तो उसे यही करना चाहिए, परंतु यदि कोई मन और बुद्धि को कृष्ण में नहीं लगा सकते हैं तो भगवान आगे कहते हैं, अथ चितम समाधातुम न शक्नोसि मई स्थिरम। अथ यदि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थित नहीं कर सकते हो तो मन और बुद्धि को मुझ में स्थित करने का अभ्यास करो, और ये अभ्यास क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु इत्यादि नवदा भक्ति के द्वारा इसका अभ्यास करो। परंतु कुछ लोग यह भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी भगवान आगे कहते हैं कि अभ्यासे अपि असमर्थसि। हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परमं भव, तो मत मेरे लिए कर्म करो, और यदि तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त होगे। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को यही उपदेश दे रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में गृहस्थियों को कर्म करना चाहिए, परंतु कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल मंदिर में बैठकर भक्ति करना यही सही भक्ति है, परंतु ऐसा नहीं है। आप अपनी ऑफिस में बैठकर भी भक्ति कर सकते हो, आप स्कूल में रहते हुए कॉलेज में रहते हुए किसी भी जगह रहते हुए भक्ति कर सकते हैं, परंतु करना क्या है, अपने कर्म को अपने किए हुए कार्य को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है। प्रैक्टिकल में आपको बताऊं, एक व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन सका, मंदिर में केवल भगवान का भजन नहीं कर सका, परंतु यदि वह गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है और यथा योग्य अपने काम धंधे में जाकर, बिजनेस में जाकर जो धन अर्जन करता है, धन अर्जन करने के लिए एक दिन उसे 6 घंटा लगते हैं और 6 घंटे में वह जो धन कमा कर आया है उस धन को यदि भगवान को अर्पण करता है तो 6 घंटा उन्होंने जो ऑफिस में बिताया ये उनका भजन है। क्योंकि वे सारे कर्म के फल को वे भगवान को अर्पण कर रहा है, इसलिए वे कर्म भी भगवान की भक्ति हो जाती। तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि अपने सभी कर्म को भगवान वासुदेव को समर्पित करना चाहिए। तब मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हम हमारे सभी कर्मों को वासुदेव को अर्पण करेंगे, परंतु ये कैसे करना चाहिए। मान लीजिए एक स्त्री है, स्त्री अपने कार्यों को वासुदेव को भगवान को अर्पण कैसे कर सकती है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल यही है कि स्त्री यदि घर पर कुछ भोजन बनाती है, इस भोजन को सबसे पहले भगवान को अर्पण करे और भगवान को अर्पण करने के बाद अपने घर पर सभी लोगों को वह भोजन प्रसाद के रूप में दे। यदि कोई पुरुष है वे धन कमाता है तो धन किसी मंदिर में दान करे, और वह यदि कुछ भी चीज घर पर लाता है तो कृष्ण विषयक वस्तु अपने घर पर लाए। यदि आप पढ़ते हो तो मैं आगे चलकर पढ़कर बहुत बड़ा प्रचारक बनूंगा, यह सोचकर यदि पढ़ते हैं तो वह पढ़ना भी एक भक्ति है। केवल चेतना बदलनी है, भावना बदलनी है, कार्य वही करने हैं, हमें वही भोजन करना है, वही खाना है, वही पीना है, कांदा लहसुन चाय कॉफी नहीं, बाकी का जो हम खाते हैं वही करना है, परंतु भगवान को अर्पण करके। इसे कहा जाता है वासुदेव अर्पणम, सभी कर्मों को वासुदेव को अर्पण। परंतु युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि किस प्रकार हम हमारे कर्मों को भगवान वासुदेव को अर्पण करें, यह हम किससे जाने। आपने कह तो दिया सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करो, परंतु यह उपदेश हमें किससे मिलेगा, ये कैसे हम कर पाएंगे। तब नारद मुनि कहते हैं कि साक्षात उपासित महामुनि, अपने किए हुए कर्मों को के फल को भगवान को कैसे अर्पण करना चाहिए यह महामुनि ही बता सकते हैं। इसलिए महामुनि के पास उपासित जाना चाहिए, और महामुनि के पास, महामुनि का सबसे पहले यह जानना चाहिए मुनि का अर्थ क्या होता है। मुनि का अर्थ होता है मननशील, जो मनन करते हैं उसे मुनि कहा जाता है। परंतु हम देखते हैं मनन तो कई लोग करते हैं, एक छोटा बालक भी मनन करता है, स्कूल में जो होमवर्क दिया है पढ़ाई करने के लिए मनन करता है, एक ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति भी मनन करता है आज किसको फोन करना है ये करना है, एक स्त्री भी मनन करती है अपने पति का, एक व्यापारी, एक बनिया भी मनन करता है। मनन तो सब लोग करते हैं, और मुनि सब लोग को कहा जाता है, परंतु वास्तव में जो मौन धारण करता है उसे मुनि कहते हैं, जो कुछ नहीं बोलता है केवल मौन लेकर बैठा है उसे मुनि कहते हैं। तो नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को मुनि का संग करने के लिए नहीं कहा, किसका संग करने के लिए कहा है, महामुनि का संग करने का है। मुनि का अर्थ होता है जो मौन बैठता है, परंतु महामुनि का अर्थ होता है कि कृष्ण के अलावा, कृष्ण की कथा के अलावा वे कुछ नहीं बोलते हैं, केवल निरंतर कृष्ण की कथा जो बोलते रहे उसे महामुनि कहा जाता है। जिनके मुख से केवल कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा, कृष्ण के उपदेश निकलते हैं उसे महामुनि कहते हैं। ऐसे महामुनि के पास, उपासित के पास जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे महामुनि के पास जाते भी हैं परंतु प्रणाम करके चले जाते हैं। परंतु यहां पर युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, ऐसे महामुनि के पास जाकर उपासित, उपासित का अर्थ होता है इसकी संधि विच्छेद इस प्रकार से, उप आसित। उप का अर्थ होता है निकट और आसित का अर्थ होता है बैठना, आसन के ऊपर बैठना। उपासित का अर्थ होता है निकट बैठना। तो सबसे पहले गृहस्थी में ही रहना चाहिए, गृहस्थी में रहकर गृहस्थी के कर्म करना चाहिए, इस कर्म को भगवान वसुदेव को अर्पण करना चाहिए, और वसुदेव को किस प्रकार से अर्पण करना चाहिए यह जानने के लिए महामुनि के पास जाकर बैठना चाहिए, नहीं कि बस उसका दर्शन करके प्रणाम करके चले जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये कथा सुनकर महामुनि के पास जाते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, चरण में पड़ जाते हैं, परंतु महामुनि का वास्तविक संग इसे नहीं कहा जाता है। वास्तविक महामुनि का संग उसे कहा जाता है जो महामुनि के पास जाकर उपासित बैठता है, जैसे आप सब बैठे हो। परंतु कमी यही है कि आपके सामने कोई महामुनि नहीं है, महामूढ़ बैठा है। अगर महामुनि होता तो आपका यह समय बहुत ही उपयोग बन जाता। तो महामुनि के पास जाना चाहिए और उसके पास घंटों भर बैठना चाहिए। संसार के लोगों को जब हम कहते हैं कि महामुनि के पास जाकर बैठे तो कहते हैं, अरे पास जाकर बैठने की क्या आवश्यकता है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चंदन साधु की हरे कोटि अपराध है। महामुनि के बाजू में एक घड़ी भी अगर बैठ जाएंगे तो कोटि कोटि अपराध शमन हो जाएंगे, बैठने की क्या आवश्यकता है। परंतु ऐसा नहीं है, महामुनि के पास, महामुनि अर्थात जो भक्ति में बड़े चढ़े हैं, जिसके मुख से केवल कृष्ण के अलावा कुछ नहीं निकल रहा है, उनके पास जाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कुछ गृहस्थों को कहते हैं कि आप दिख नहीं रहे हो, कितने दिनों से प्रोग्राम में नहीं आते हो, भक्तों के संग में नहीं हो। तो ये कहते क्या करे प्रभु जी, हम फंसे हुए हैं, हम गृहस्थ की जाल में फंस गए हैं, अब कैसे आए हैं। वास्तव में लोग ये कहते हैं परंतु केवल कहते हैं, इसका अनुभव नहीं करते हैं। वास्तव में सब लोग गृहस्थी की जाल में फंसे हुए हैं, इसीलिए मान महामुनि का संग, उपासित नजदीक से संग नहीं कर पा रहे हैं, परंतु इसका अनुभव नहीं है। वे तो यही समझ रहे हैं कि हम गृहस्थ हैं और हम बहुत परफेक्ट हैं और हम अच्छी अच्छा जीवन जी रहे हैं, बोलने के लिए ही बोल रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति फंसा हुआ है तो फंसा हुआ व्यक्ति जिस जाल में फंसा हुआ है उस जाल को तोड़ना चाहेगा। यदि कोई व्यक्ति जाल में फंस गया है तो अपने दांत से या छुरी से या हाथ से उस जाल को काटना चाहेगा। परंतु ये तो बिल्कुल मस्त होकर पड़े रहते हैं, गृहस्थ में आसक्त होकर रहते हैं और केवल बोलने के लिए बोलते हैं कि क्या करें प्रभु जी, हम फंसे हुए हैं। वास्तव में यदि फंसे हुए हैं, हृदय से यह जान भी लिया है, तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए यह जाल को काटने का। और महाराज जी तो बहुत ही सुंदर कहते हैं, यदि जाल को न काट सको तो जाल को लिए लिए ही सत्संग में आ जाना चाहिए। यदि आप जाल को नहीं काट सकते हो, आप समर्थ नहीं हो कि अपनी गृहस्थी की आसक्ति, पत्नी के पुत्र की आसक्ति, तो जाल में बंधे बंधे ही आकर बैठ जाना चाहिए। और महामुनि जो बहुत बड़े बड़े संत हैं, इस जाल से मुक्त करवा देंगे। वास्तव में गृहस्थी की इस जाल को श्रीमद् भागवतम में दावा अग्नि के साथ तुलना किया गया है। बहुत दुख है इसमें निश्चित रूप से, और दावा अग्नि, और हमारे नरोत्तम दास ठाकुर भी बहुत ही सुंदर गाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर नहीं, कौन है, संसार दावा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। संसार दावा नलली ढलोक त्रारण्य करुण्य घना घनत्वम् संसार दावा नलली ढलोक त्रारण्य करुण्य संसार दावा नलली ढलोक त्रारण्य करुण्य घना घनत्वम् संसार प्राप्स्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविन्दम् प्राप्स्य संसार दावा नलली ढलोक त्रारण्य करुण्य घना घनत्वम् संसार दावा नलली ढलोक प्रारण्य करुण्य घना घनत्वम् प्राप्स्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविन्दम् प्राप्स्य प्राप्स्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविन्दम् प्राप्स्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर गाते हैं संसार दावा नल लीड है लोक यह संसार यह गृहस्थी दावा नल के समान है और इस गृहस्थी की जाल में फंसकर जैसे व्यक्ति दावा नल में फंस जाता है और दुख का अनुभव करता है वैसे ही गृहस्थी की जाल में फंसकर व्यक्ति दुख का अनुभव करता है और यह कहते हुए कि मैं बहुत दुखी हूं फंसा हुआ हूं ये कहते कहते यह दावाग्नि नहीं मिटेगी या छोटे मोटे सुख को प्राप्त करने में भी यह दावाग्नि नहीं बुझेगी। जंगल में जब आग लगती है तो बाल्टी से पानी डालकर वह आग नहीं बुझती है या बड़े बड़े फायर ब्रिगेड भी लेकर जाओ फिर भी वह आग नहीं बुझती है। जब तक उस दावाग्नि में वर्षा नहीं होती है तब तक वह दावा अग्नि बुझती नहीं है। ठीक उसी प्रकार गृहस्थ जीवन की जाल में जो हम फंसे हुए हैं जब तक गुरु के पास जाकर साधु संत मुनि के पास जाकर महामुनियों के पास जाकर उनकी कृपा नहीं लेंगे उनके मुखों से शब्द नहीं सुनेंगे कथा नहीं सुनेंगे तब तक गृहस्थी की जाल टूटेगी नहीं। गुरु ही एकमात्र समर्थ है इस जाल को तोड़ने के लिए। इसलिए हे युधिष्ठिर प्रत्येक गृहस्थ को चाहे वह जाल में बंधा हुआ हो चाहे वह जाल में न हो महामुनियों का संग करना चाहिए और महामुनियों का संग करके ही वह जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है और अपने कर्तव्यों को समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में ब्रह्मा जी भी बहुत सुंदर प्रार्थना भगवान से करते हैं। कहते हैं तम त्वाम वयम नाथ समुज्जिहानम सरोज नाभा चिरित सेप्तिथार्थम दृष्ट्वा गता निवृत मध्य सर्वे गजाद वार्ता इव गांग मंभ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे एक हाथी बहुत बड़े वन में दावा अग्नि में फंस गया हो और दावा अग्नि से जलकर जो हाथी की अवस्था है ऐसी मेरी अवस्था है प्रभु। इस संसार में जैसे कोई हाथी जंगल में चारों ओर से आग लगी है और कहीं भी जाता है उसे आग के अलावा कुछ नहीं, आग की लपट से उनका शरीर जल रहा है, वैसे ही गृहस्थ की जाल में फंसकर व्यक्ति का मन और हृदय जल रहा है। लेकिन ऐसे समय पर जब महामुनि का संग होता है तो मुझे वैसा ही अनुभव होता है जैसे कोई दावा अग्नि में फंसे हुए हाथी को गंगा में स्नान करने का अवसर मिल जाए और समस्त ताप से आग की लपट से मुक्त होकर गंगा नदी के पावन ठंडे ठंडे जल का अनुभव करता है, वैसा ही अनुभव गृहस्थ फंसा हुआ गृह मुद्दी अपने गृहस्थ की जाल में फंसा हुआ व्यक्ति जब साधु मुनि के पास महामुनियों के पास आकर बैठता है तो बहुत सुंदर सुख का आस्वादन कर सकता है। तो वास्तव में महामुनियों के पास जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उपासित उसके पास बैठकर घंटों भर उसके पास बैठे रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने यहां तक कह दिया कि गृहस्थी के जो कर्तव्य है कर्तव्य करने जितना ही वह कर्तव्य करने चाहिए और बाकी का जितना भी समय मिले उपासित महामुनि महा अपने से जो बड़े भक्त है उनके पास जाकर बैठना चाहिए और उनके मुख से उपदेश सुनना चाहिए। और ये केवल नारद मुनि ही नहीं, ये बड़े बड़े वेदाचार्य बड़े बड़े नीति के शास्त्र के रचयिता चाणक्य पंडित भी इस बात को कहते हैं। चाणक्य पंडित अपने नीति शास्त्र में बहुत ही सुंदर कहे हैं कि यदि संग करना हो तो बड़े व्यक्ति का करना चाहिए। बड़े व्यक्ति का संग करने से हम बड़ा बन सकते हैं। इस जीवन में सबको बड़ा बनना है परंतु बड़ा बनने के लिए बड़े व्यक्ति का संग करना चाहिए। और इस संसार में हम देखते हैं भगवान के भक्त से बड़ा कौन है। एक दिन मैंने यहां पर ही कथा बताई थी, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो किसी ने कहा यह पृथ्वी सबसे बड़ी है। तो एक व्यक्ति ने कहा पृथ्वी नहीं, सूर्य सबसे बड़ा है, दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है परंतु सूर्य सबसे बड़ा है। तो एक भक्त ने कहा सूर्य क्या बड़ा है, सूर्य का प्रकाश पता है क्या है, सूर्य का प्रकाश भगवान विष्णु के नख की ज्योति है सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य से बड़े है भगवान। परंतु एक भक्त ने कहा भगवान भी बड़े नहीं है, भगवान से बड़े हैं भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं साधव हृदयम मह्यम, जो साधु है जो भक्त है उसे मैं मेरे हृदय में रखता हूं। सबसे बड़े भक्त है और सबसे बड़े भक्त होने के कारण इस संसार में संग यदि करना है तो भक्तों का करना चाहिए, भगवान विष्णु के भक्तों का, और उससे ही जीवन की सिद्धि और जीवन के कर्तव्य हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने बहुत ही सुंदर कहा, ये सबको याद रखना चाहिए। सबसे पहले क्या कहा, गृहस्थ अवस्थितो राजन, हे राजन हे युधिष्ठिर गृहस्थ में ही रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, भावुक बनकर भाव में आकर सब छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, भागना नहीं है। अर्जुन ने यही किया था, अर्जुन करने ही जा रहे थे, कृष्ण को कहे कि कृष्ण युद्ध नहीं करना है, मैं भीख मांगकर खा लूंगा। गुरु न हत्वा महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अपि इह लोके अत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुंजी ये भोगान रुधिर प्रतिग्दान। खून की नदियां बहना बहलाने से तो अच्छा है स्वयं गुरु को भाई को पिता चाचा मामा इत्यादि को मारने से अच्छा है भीख मांगकर खा लेना। हे कृष्ण मैं जीवन भर भीख मांगकर खा लूंगा परंतु हमारे ही स्नेही जीवन स्वजनों के साथ में युद्ध नहीं करूंगा। रथ से उतर के वे भाग ही रहे थे परंतु भगवान ने उसे रोका, भागना नहीं है, कर्म करना है परंतु माम अनुस्मर मेरा स्मरण करते हुए मेरा नाम लेते हुए। तो गृहस्थु अवस्थितो राजन, गृहस्थ में ही रहना चाहिए और गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ के जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के फल को भगवान को अर्पण करना है। और उस कर्तव्य के फल को किस प्रकार से भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि इसमें सब लोगों के लिए अलग अलग चीज होती है, इसलिए पर्सनली महामुनि के पास जाकर बैठना चाहिए, उससे प्रश्न पूछकर यह जानना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछे कि महामुनि के पास जाकर क्या होगा। आप कह देते हो महामुनि के पास जाना चाहिए, तो महामुनि के पास जाकर क्या होगा यह मैं आपको अगले शुक्रवार को बताऊंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।